मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 2 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं गौरव कुमार शर्मा, आपका गांव है गुराना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। धीरज कुमार चौधरी, आप मुंबई से हैं, राज्य बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। और गरिमा, आप नई दिल्ली से हैं। तो गौरव, धीरज और गरिमा, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के मुख्य विषय में मैं थोड़ी सी चर्चा आप सबसे रेपो दर और मुद्रा स्फीति के बारे में करूंगा। रेपो दर और मुद्रा स्फीति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें देख लेते हैं जो अखबारों में और न्यूज से मुझे मिली है। आज मित्रों मैं आपको अखबारों के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लेख प्रोवाइड कर रहा हूं। एक लेख है कमलेंद्र कंवर जी का जो नव दुनिया में छपा है और दूसरा लेख है चेतन भगत जी का जो दैनिक भास्कर में छपा है। और इन दोनों लेखों का संबंध अभी असम में जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जो तैयार किया गया है उसको लेकर है। और डेफिनेटली अब यूं कह लीजिए कि नागरिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से हम अब आगे बढ़ करके एक प्रकार से अब दूसरे स्टेज पर आ गए हैं। और वो स्टेज कौन से है उनकी कल मैंने आपसे बड़ी विस्तार के साथ चर्चा की थी। अब ये जो स्टेज है इनफैक्ट सच में इस तरह का स्टेज आ गया है कि चलिए जब जो 40 लाख लोगों के नाम जो अभी नहीं है उन 40 लाख लोगों का क्या होगा, क्या किया जाए। बांग्लादेश ने तो साफ साफ कह दिया कि वो नागरिकों को नहीं लेंगे। वर्मा में रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या पहले से रोहिंग्या की समस्या पहले से चल रही, वहां से लोग छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं, हम वर्मा से भी उम्मीद नहीं कर सकते। और देखिए 40 लाख की संख्या तो अभी इसमें है, पश्चिम बंगाल में भी इनकी बहुत बड़ी संख्या, उधर त्रिपुरा वगैरह में भी ये प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये केवल असम तक सीमित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो बॉर्डर स्टेट हैं वहां ये समस्याएं इस तरह की हैं। और बकायदे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया गया है कि लगभग 1.25 करोड़ घुसपैठिए भारत में है। और ये स्टेटमेंट आपको मैं बता रहा हूं कि लगभग 10 साल पहले का है, लेटेस्ट तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, यानी इतनी बड़ी संख्या है। तो सवाल यह है कि अब किया क्या जाए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको बकायदे नोट भी करके चलना चाहिए। तो आप वो कैसे करेंगे मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। आज आप चेतन भगत जी का ये आर्टिकल पढ़िएगा। शुरू में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है ये जानकारियां तो आपको हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप इसके बारे में कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें आपको रिपीट होती हुई लगेंगी। लेकिन होता ही है, लेख में ऐसा ही होता है, यानी कि पूरा लेख कोई भी आपके काम का होता है उसमें से आपको 1-2 पॉइंट मिलते हैं और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जब इनके आखिरी पैरा में आएंगे तो आखिरी पैरा बहुत सारयुक्त पैरा है जिसमें आपको अपने लिए ढेर सारी चीजें मिलेंगी। यस, ढेर सारी चीजें मिलेंगी, बहुत चीजें मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर इन्होंने बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। पहला जो इन्होंने सबसे जो वैलिड पॉइंट दिया है जो बड़ा तर्कसंगत है, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस सरकार, जब राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय 1985 में एक समझौता हुआ और उस समझौते में ये किया गया कि 1971 तक जो लोग आए हुए हैं उनकी पहचान की जाएगी और बाकी लोगों को पहचान करके फिर एक्शन लिया जाएगा। तो 14 साल का फर्क था, देखिए 1985 में ये किया गया और 71 उसकी डेडलाइन रखी गई, जो माइलस्टोन किया गया कि 71 तक के नागरिक, तो 14 साल का फर्क था। तो इन्होंने एक पॉइंट रेस किया है कि जब 1985 में ये किया गया था तो 1985 में ही इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि उस समय अगर एक्शन लिया गया होता तो बहुत से लोगों को, चाहे उस समय जब जो भी राजनीतिक स्थितियां होती, आज भी वो स्थितियां होंगी, कभी न कभी होनी ही थी, तो वो सबके सब बाहर चले गए होते, तो अब आप देखें कि 1985 के बाद अब लगभग लगभग आप सोच करके देखिए कि 85 के 15 साल वो हो गए और 18 साल ये हो गए, आप सोचिए कि 30 से अधिक साल, 30-32 साल हो गए। तो उसके उस समय जो लोग निकाले जाते, एक तो 15 साल वो पहले से रह रहे थे और फिर ये 30 साल और जोड़ दीजिए तो इसका मतलब है कि वो 45 साल से फिर वहीं रह रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, जमीन खरीद लिया है, घर बना लिया है। और फिर ये भी है कि भारत और बांग्लादेशी जो लोग हैं उनमें काफी कुछ सांस्कृतिक समानता भी है, तो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे हैं। तो उन्होंने पहला पॉइंट ये रेज किया कि पहली तो वो गलती हो गई कि 1985 में नहीं किया गया, और बोले कि अगर अभी भी जब आप उसी को लेकर के चल रहे हैं तो जो 1971 की जो बात आपने कही है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि जो 14 साल का फर्क है वो 14 साल का फर्क होना चाहिए, यानी आप 2018 में ये बात कर रहे हैं तो 14 साल घटा दीजिए उसमें से, यानी कि 2004 को आप डेडलाइन लेकर के चलिए कि 2004 तक। तो ये बहुत सही उन्होंने पॉइंट रेज किया। देखिए क्या है, सरकार और हमारे देश का पक्ष एक हो सकता है, राजनीति का पक्ष एक हो सकता है, मानवीय पक्ष दूसरा हो सकता है, संवैधानिक पक्ष तीसरा हो सकता है, इसके बहुत से पक्ष हो सकते हैं, तो एक तार्किक तो पक्ष है। दूसरा फिर उन्होंने दिया है जो बात कही है वो मानवीय पक्ष की बात कही है। मानवीय पक्ष इस मायने में उन्होंने रखा है कि भाई भारत एक बड़ा भाई है, हमारी सांस्कृतिक मतलब परंपरा रही है कि बाहर से आए हुए लोगों को हम अपने पास संरक्षण दें, तो अब हम उनका क्या करें, वो यहीं रच बस गए हैं तो उनके साथ उनको बजाय इसके कि हम बाहर ही कर देने की सोचें कि भैया तुम जाओ यहां से क्योंकि वो कहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई और भी रास्ता निकाला जा सकता है। जैसे एक रास्ता उन्होंने बताया ग्रीन कार्ड देने का, अमेरिका में ग्रीन कार्ड दिया जाता है, जो भारतीय जाते हैं या जो दूसरे देश के लोग जाते हैं वो ग्रीन कार्ड देते हैं और वो रहता है कि वो हमेशा वहां रहें और विदेश काम करने का उनको अधिकार होता है, विदेशी ही होते हैं लेकिन उन्हें काम करने का अधिकार होता है और अमेरिका में जब तक चाहे वो रहें, तो ऐसा कुछ इनके साथ किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हम उन्हें ये भी कर सकते हैं कि भाई ठीक है आप रहिए वो करिए लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जो अगर उस पर वोट देने के अधिकार को आप उनके खत्म कर देंगे तो फिर वो जो राजनीतिक जो मामले हो रहे हैं वो काफी कुछ शांत हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट रेस किए हैं। तो मैं यहां आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें और इसमें से जो आपको अच्छे पॉइंट्स लगते हैं उन्हें आप नोट करते जाएं, और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका भी होता है। जो इसी से रिलेटेड जो दूसरा आर्टिकल है कमलेंद्र कंवर जी का, इसमें आपको असम के बारे में जानकारी मिलेगी कि असम में क्या प्रॉब्लम इनकी वजह से हो रही है, वो भी जब आप लास्ट लास्ट में जाएंगे। ज्यादातर चीजें आपको लास्ट में ही मिलती है ना, शुरू में तो आप डेवलप करते हैं, कंक्लूजन तो आप लास्ट में ही देते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहां भी आपको कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और मैं चाहूंगा कि इन पॉइंट्स को भी आप बकायदे नोट करें, तब आप अपने उत्तर को तार्किक ढंग से लिख पाएंगे। फिर चाहे कोई भी प्रश्न इस पर क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि आपके पास मटेरियल होगा, आपके पास तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, तो बस उन फैक्ट को आपको एनालिसिस करके जिस तरीके से पूछा गया है उस तरीके से उत्तर के आपको जवाब दे देने हैं। तो दोस्तों ये आप दोनों लेख जरूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि मैं आज आपसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बात करूं कि इनफैक्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल होता क्या है, लेकिन फिर वो मुझे लगा कि नहीं, रेपो दर पर बात की जानी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ये मान करके चलिए कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, सबसे पावरफुल हिस्सा है और इस पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। कभी संभव हुआ तो मैं इस पर अलग से आपसे बहुत ही डिटेल में बात करूंगा। अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर, रेपो दर और मुद्रा स्फीति। फ्रेंड्स आपने न्यूज में सुना, अखबारों में पढ़ा भी है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 0.25% या 25 आधार अंक बढ़ा दिए, रेपो दर भी बढ़ाया है और रिवर्स रेपो दर भी बढ़ाया है। इसकी डेफिनेशन आप जानते हैं, रेपो दर वह दर होती है जिसके आधार पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो दूसरे बैंकों को धन देता है, ऋण देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक से 100 करोड़ रुपए लिया अपने इस्तेमाल के लिए, तो अब अगर रिजर्व बैंक ने दिया है उसको तो उसके ऊपर ब्याज तो वो लेगा ना। तो पहले मान लीजिए कि वो 6.25% पर ब्याज देता था, ब्याज पर देता था, तो अब वो 6.5% पर देगा, 0.25 बढ़ा दिया उसने, ठीक है। तो बट नेचुरल है कि अब बैंक भी आगे उसको बढ़ाएंगे। और रिवर्स रेपो दर वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने 100 करोड़ रुपए ले लिए, अब उसको लग रहा है कि यार इसमें से तो ज्यादा ही हो गया, 50 करोड़ तो बेकार पड़े रहेंगे, हमको तो जरूरत है नहीं, लोग ऋण लेने आ नहीं रहे हैं, तो 50 करोड़ का क्या करें। अगर बैंक के पास वो पैसा रखा रह गया तो रिजर्व बैंक को वो ब्याज तो देगी, तो रिजर्व बैंक से रिक्वेस्ट करेगी कि भाई आप ये पैसा वापस ले लीजिए, प्लीज ये हमारे काम नहीं आ रहा है, तो वो रिवर्स रेपो दर, अब वो जो पैसा 50 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक को वापस करेगी, उसके बदले में वो रिजर्व बैंक SBI को ब्याज देगी, तो वो 0.25% कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, तो उसमें भी बढ़ा दिया है, क्योंकि इधर हम आपको देने में बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप हमें वापस करेंगे तो हम भी आपको थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे। तो हमेशा जो रिवर्स रेपो दर है, याद रखिए कि रेपो दर से कम ही होगा, है ना, एक सजा के तौर पर आप कह लीजिए, दंड के रूप में भी आपको सोच समझ करके पैसा लेना चाहिए था, है ना, ताकि लोग ऐसा नहीं कि जो मर्जी आए आप आया और रकम ले ली और फिर इसके बाद रखे रहे, तो इसके लिए व्यवस्था की गई है। अब आप देखिए कि मैं आता हूं मुद्रा स्फीति पर। सच पूछिए तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये बेसिकली जो मार्केट में जो पैसा आता है, जो करेंसी आती है, जो धन आता है, उसको रेगुलेट करने का एक सिस्टम है। देखिए जो मार्केट में सामान्य तौर पर हम सैद्धांतिक रूप से बात करें और व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, जो बैंक हैं वो धन के खजाने हैं, यहीं से पैसा जाता है, चाहे इंडस्ट्री के लिए ले या आप और हम सब मकान बनवाने के लिए, बाइक खरीदने के लिए ले, किसी भी रूप में ले, तो बैंक पैसा देता है, हम लोगों को देता है, ये कह लीजिए पब्लिक को पैसा देता है। जब ब्याज दर कम होगा तो हम उत्साहित होंगे कि यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, क्योंकि ब्याज दर कम है तो हम बैंक से ज्यादा पैसा लेने के लिए आकर्षित होंगे, मोटिवेट होंगे। तो बैंक से जब हम ज्यादा पैसा लेंगे, तो जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि हम मार्केट में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो मार्केट में जो करेंसी का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बैंक से ले लेकर के बाजार में उसको डाल दिया है। तो जब बाजार में करेंसी का फ्लो ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि अब पैसा ज्यादा हो गया है और वस्तु की मांग बढ़ गई है, सबने सोचा कि बाइक खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो सबने बैंक से लोन ले लिया और सबने बाइक की डिमांड बढ़ा दी, तो बट नेचुरल है कि अब इसकी कीमत बढ़ जाएगी, बाइक की कीमत बढ़ा देगा जो कंपनी वाला है कि यार खूब मांग हो रही है, हमारे पास तो इतनी है ही नहीं, तो इसका मतलब है बाइक की कीमत बढ़ गई। तो आप बाइक को हर वस्तु पर लागू कर दीजिए, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, मतलब मार्केट में जब पैसे का फ्लो बढ़ेगा, करेंसी का फ्लो ज्यादा होगा, तो यानी कह लीजिए करेंसी की सप्लाई जब ज्यादा होगी तो वस्तु की डिमांड बढ़ेगी और इससे वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाएगी, और इसे ही कहते हैं, वस्तु की कीमत बढ़ जाने को कहते हैं मुद्रा स्फीति, या ये कह लीजिए कि जो करेंसी होती है उस करेंसी की कीमत को गिर जाने को भी हम कहते हैं मुद्रा स्फीति, दोनों बिल्कुल एक ही है, इस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो अब बैंक को यह लग रहा है कि भारत में मुद्रा स्फीति की स्थिति आ सकती है, और यह बहुत ही खतरनाक स्थिति, एक सीमा तक तो मुद्रा स्फीति ठीक है, लेकिन एक सीमा के अधिक होने पर इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। इसके 2-3 कारण हैं, जैसे सरकार ने अभी MSP के रेट बढ़ाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, तो बट नेचुरल है कि खाद्यान्न के रेट बढ़ेंगे, जब खाद्यान्न के रेट बढ़ेंगे तो मुद्रा स्फीति की स्थिति आ गई, वस्तु की कीमत बढ़ गई ना। दूसरा, बैंक को कहीं ना कहीं दिमाग में इस बात का भी भय है कि 2019 में चुनाव होने हैं, तो चुनाव के समय में सरकार क्या करती है कि लोक लुभावने खूब घोषणाएं करेगी पब्लिक के लिए कि ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा, ये ऋण माफ, फलाने फलाने, गवर्नमेंट घोषणा करेगी, तो उसकी वजह से भी बैंक के, आप यूं कह लीजिए कि जो धन है वो मार्केट में ज्यादा आ जाएगा, तो जो मार्केट में जो ज्यादा धन आने की जो आशंका उसको सता रही है, तो ये सोच रहा है कि अपने लेवल पर तो हम कम से कम कंट्रोल करें, तो कहां पर कंट्रोल कर सकती है, वो रेपो दर के जरिए, कि वो मान करके चल रही है कि इससे बैंक भी अपने ब्याज दरों में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर देंगे, और जब बैंक अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देंगे तो लोग बैंकों से ऋण लेना थोड़ा सा कम कर देंगे, और जब बैंकों से ऋण लेना कम करेंगे तो फिर मार्केट में जो पैसा है वो थोड़ा सा कम आएगा, तो वस्तुओं के मूल्य उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, यानी कि मुद्रा स्फीति थोड़ी सी नियंत्रित रहेगी। तो मित्रों, ये था आज के मुख्य विषय के बारे में, रेपो दर और मुद्रा स्फीति को लेकर। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड ही कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और इसी में से एक दोस्त है हमारे मोहित संजीव, जो सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं सराय सिकंदर उत्तर प्रदेश के। उन्होंने सूचित किया है कि सीबीएसई का नेट एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो मोहित, हम सबकी तरफ से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से, इस सफलता के लिए आपको हम सब बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ के नाम हैं: तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, प्रभाकर कुमार माचवे, अभिनव मौर्य, शिवपाल सिंह, गौरव कुमार पाठक और ब्रजेश कासौधन। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।